کرنا ہے بن کے تپسی مورت ساتھی اب اپنے گھر چلنا ہے لگی لگن بس ایک یہی
اوم شانتی. بابا نے جیسے کہا ہوا ہے کہ بچوں کے ہردے کی آوازیں گیتوں کے سر کے روپ میں بچے سنتے ہیں. اب گیت تو بہت سندر ہیں, لگی لگن بس ایک یہی, ہمیں تپسیا کرنی ہے اور بن کر اب سمپن اور سمپورن اب گھر چلنا ہے. ہم سب اپنے آپ سے پوچھنے, سچ مچ یہ گیت میرے ہردے کی آواز ہے یا کسی انے کی آوازیں گیت کے روپ میں ہم سن رہے ہیں, یا یہ انے کی آوازیں بھلے ہیں لیکن انہیں ہم اپنی آوازیں بنا کر, اس گیت کو اپنا بنا کر سوئم سن رہے ہیں, کیونکہ یہ ہم سب کے واسطے میں ورتمان سمے کے انوسار جو پرشاد کی سٹیج چاہیے وہ ہردے کی ایک لگن چاہیے. کتنا بھی کسی کو کہا جائے ایسا نہیں, ایسا کرو, ایسا کرنا چاہیے, لیکن بات ہے کہ ہردے کی لگن جب ان کی اپنی نہیں ہوگی تب تک وہ کاریہ ہو نہیں سکتا. ہاں یہ ضرور ہے کہ کچھ سمے پہلے لگن نہ ہو اور کسی کی کچھ سمے کے پشچات ہی لگن آ جاتی. ایسا بھی کئی بار ہم نے درشیہ دیکھا. ایک بار ایک بھائی مدھوبن سے ہو کر گئے, انہوں نے ہم کو کہا کہ دیدی اس بار مدھوبن کا ٹرپ تو ایک نیا جیون, ایک نیا سنچار کرنے والا, ایک نیا جیے دان دینے والا ٹرپ تھا, اس لیے اس بار میرے جیون میں بہت پریورتن آیا. اور وہ پریورتن کے کچھ پوائنٹس ہمیں سنا رہے تھے اور میں بھی بڑے دھیان سے سن رہی تھی کہ ایسے کون سے پیارے بابا کے پوائنٹس ان کی بدھی میں سیٹ ہو گئے جنہوں نے ان کے جیون کو ایک نیا جیون دیا. اوشیہ اچھک ہوتا ہے منشیہ ایسی باتوں کو سننے کے لیے. تو جب وہ باتیں سنا رہے تھے تو باتیں تو کچھ کامن سی تھی جو نئی نئی پرتیت ہو رہی تھی. ایسا لگ رہا تھا کہ کئی بار انہیں یہاں بھی سنایا گیا اور سنی ہوئی باتیں ہیں, لیکن آج ان کے جیون کا پریورتن کیسے ہو گیا. تو یہ واستوکتا ہے کہ ہمارا لیول آف انٹیلیکٹ جو ہمارے بدھی کا ستر ہے, کسی چیز کو گرہن کرنے کی جو استھتی ہے وہ ہمیشہ ایک برابر نہیں ہوتی. کبھی ہمارے کسی بات کو گرہن کرنے کی استھتی اتنی اچھ اور اتنی سریشٹھ ہوتی ہے کہ وہی بات دسوں بار سنی ہے لیکن اتنی دھیان میں نہیں رہتی, سیٹ نہیں ہوتی, اور اچانک وہ بات کبھی سنی گئی تو ایسا لگتا ہے کہ سچ مچ یہ تو نیا جیون دینے والی بات ہے, بات وہی ہے. لیکن اس بات کو کسی پرکار کہنے کا لہجہ بھی کچھ بھن ہو سکتا ہے اور سننے والے کی منوستھتی بھی اس سمے اس لیول پر ہوگی جس میں اس کو وہ بات سیٹ بیٹھ جاتی. اس لیے بابا کہتے ہیں بیتے سمے کو بھول جانا کہ بٹھیاں تو ہم نے کئی بار کی, آپ دیکھیں کیا ہوگا, پہلے تو کچھ ہوا نہیں, یا کوئی انے ایسا سوچے کئی بار یہ بٹھیاں کر چکے, کیا بار بار بٹھی کرنے کا اتنا فائدہ ہوگا. بابا کہتے بیتی کو ایسے فل سٹاپ لگا دو جیسے پہلے جیون کی بات ہے, لیکن ورتمان سمے مجھے جو کچھ مل رہا ہے یہ آج ہی مل رہا ہے, اور اس کو اس انکول ہم سنیں کہ ہو سکتا ہے آج ہمارے بھاگے کا دوار کھلنے والا ہو, और वही बात हमें इतनी सेट बैठ जाए कि जिसको हम कहते हैं बहुत समय मुश्किल था लेकिन आज लगता है मुश्किल नहीं है, तो अति सरल है। इसके लिए बीती को बिल्कुल फुल स्टॉप देने की आवश्यकता होती है। आज मैंने दिव्य जीवन लिया है, इस दिव्य जीवन की पालना मुझे सर्वशक्तिवान ईश्वरी ज्ञान के आधार से मिलती है और आज मैं उस परवरिश उस पालना में प्यारे बाबा के द्वारा इनवाइटेड वो मेहमान वो बच्चा हूँ जिनकी बाबा स्पेशल खातिरी कर रहा है, केवल इसी स्मृति में हूँ। क्योंकि हमने सुन रखा है कि सगर के 60,000 पुत्र थे और वो सब मूर्छित थे। जब उनके ऊपर अमृत का छींटा पड़ा तो मूर्छित पुत्र सचेत हो गए। असल में देखा जाए तो ज्ञान सागर प्यारे बाबा के हम ही बच्चे थे जो अनकॉन्शियस हो चुके थे। मूर्छित माने क्या? अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस ऑफ द अवेयरनेस ऑफ द सेल्फ, स्वयं के स्वरूप की स्मृति की बेहोशी में थे। और बेहोशी नहीं कि 60,000 पुत्र किसी मनुष्य के होंगे और सारे के सारे बेहोश होंगे, लेकिन हम बेहोश थे, स्वयं की हमें होश नहीं थी, हम कौन हैं, क्या हैं। और जब कॉन्शियस आई, सोल कॉन्शियस, सोल कॉन्शियस का मतलब ये नहीं कि मैं आत्मा हूं, सोल कॉन्शियस हुई, उसे पता चला कौन हूं, कहां का हूं, किसका हूं, क्या था, कैसे साइकिल में आया और कैसे अंत में आकर पहुंचा और किस प्रकार अब मेरा ही अंत से आदि का समय है, ये फुल कॉन्शियस कहलाती। कई बार हम सोल कॉन्शियस समझते मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं राइट है, लेकिन कॉन्शियस हुई मुझे सोल को, तो सोल को केवल यही कॉन्शियसनेस नहीं आई कि मैं आत्मा हूं या ज्योति बिंदु हूं, उसको ये भी कॉन्शियसनेस आई कि मैं ज्योति बिंदु परम धाम की वासी हूं और ज्योति देश से यहां आया था, केवल खेल खेलने के लिए आया और किस प्रकार डिग्रेड होती होती आत्मा अंत में कहां पहुंची और कैसे बाबा मुझे पुनः जगाकर फिर से मुझे मेरी स्मृति में लाकर वापस अपने घर ले जाने के लिए मुझे तैयार करते हैं। ये सारे कॉन्शियस जब बुद्धि में आती है तब हम अनकॉन्शियस से कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं। इसलिए बाबा बच्चों को कहता है बच्चे सोल कॉन्शियस बनो, सोल कॉन्शियस स्टेज होनी चाहिए, आत्म स्मृति की स्थिति में स्थित रहो। आत्मा को जब अपनी स्मृति आ जाती है तो उसको ये जो नाशवान झूठी स्मृतियां हैं ये स्वतः ही उसकी बुद्धि से हटनी शुरू होती, और जो सत्य स्मृतियां हैं वो उसके मानस पटल पर इतनी स्पष्ट हो जाती हैं कि ये हूं मैं और यही मुझे बनकर रहना है। इसलिए सगर के बच्चे इस समय कॉन्शियस में आए हैं और आज बात चल रही है कि ज्वालामुखी योग। मैं ऐसा समझती हूं पहले याद की इंटरेस्ट और याद की स्थिति का आभास तो हमें हो, नहीं तो लगा कुछ और कि एक घंटा याद का अनुभव करने के बाद इतनी जल्दी सब उठकर जा रहे हैं पानी पीने फ्रेश होने ये होने, ऐसा हो नहीं सकता है अगर सही रूप से योग का अनुभव किया हो तो। आत्मा उस रसा स्वादन में बैठी आनंद में, यहाँ तो हुआ काम पूरा हुआ, सब्जेक्ट पूरा हुआ, पीरियड पूरा हुआ, भाषण पूरा हुआ, चलो आप दूसरा सब्जेक्ट सुनिए। इसको याद का वो तांता नहीं कहा जाता है, याद का मतलब है कि आत्मा उसके रस में इतनी लवलीन हो जाए। इसके लिए मैं एक बात सरल करके ये बताना चाहती हूँ, क्योंकि हम चाहते ज्वाला रूप स्टेज, असल में हमारा स्वरूप ही ज्वाला रूप है। इसके लिए एक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है, मनोवैज्ञानिक एक कानून है, एक लॉ है कि किसी के सामने जैसा चित्र आता है वो चित्र उसके चरित्र पर बहुत बड़ी छाप छोड़ता है। तभी किसी ने किसी से पूछा कि उनका घर कैसा है, कहा मैं बता सकता हूँ, मुझे ये बताओ उनके घर में चित्र कैसे लगे हुए, तब मैं बता सकता हूँ कि ये प्राणी कैसा है। चित्र का चरित्र के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव होता है और चित्र का बहुत बड़ा महत्व होता है। बाबा भी हमको बहुत बातें चित्रों में सुनाते हैं। और किसी ने बड़ा सुंदर कहा हुआ है कि मनुष्य के जो संकल्प भी उठते हैं वो भी चित्रों की भाषा में उठते हैं, उसमें कोई ना कोई चित्र सामने उसके आता है, अच्छा करता है बुरा करता है, लोभ लेता है क्रोध करता है, कोई चित्र सामने आता है। हमारा योग लगता है तब भी चित्र सामने है, नहीं योग लगता तब भी कोई अन्य चित्र सामने है, उस चित्र में डाइवर्ट हो गया हमारा अटेंशन, जो चित्र होना चाहिए उस चित्र से दूसरे चित्र में चला गया। और वास्तव में मनुष्य किसी भी बात को बात कहता पहले है लेकिन चित्र उसका उसके सामने पहले आ जाता है, नाम पीछे आता है। जिसका हमने एक बार यहाँ क्लास कराई थी उस पर सुना रही थी मैं कि मान लीजिए आप खाना खा रहे हैं, थाली पकड़ी है खाना खा रहे हैं, एक आपको विचार आया कि ऐसे मैं हाथ में पकड़ के थाली खा रहा हूँ, खाना इसमें अगर यही एक फट्टा सा हो तो उस पर रखी हो थाली तो कितना सहज खाना हो जाएगा। वो हाथ में खाना खाते देखकर आपको अपने एक फट्टा सा ख्याल आ गया, और फट्टा ख्याल आती आपको आता है उस फट्टे को खड़ा करने के लिए कुछ तो चाहिए, तो आपने थोड़ी टांगे उसकी सोच ली, तीन चार, जिससे आधार पर वो फट्टा मेरा खड़ा हो जाए। फिर आपको आता है कि फट्टा तो खड़ा हो गया लेकिन फट्टे को कितना ऊंचा बनाऊं, तो आप देख रहे हो खाना मैंने ऐसे रखा है तो मेरा फट्टा यहां तक तो होना चाहिए जिससे मैं उचित रूप से सहज खाना खा सकूं। अब फट्टे का साइज भी हो गया, फट्टे को खड़े करने की टांगे भी आ गई, ये सब एक फट्टा कर दिया, संकल्प क्या आया खाना जरा ठीक से खा सकूं, हाथ में कब तक थाली पकड़े रखूं। अब ऐसा फट्टा लग गया, अब उसको कोई नाम तो देना पड़ेगा, तो नहीं कहेंगे फट्टा है उसके तीन चार ऐसी लगी हुई है फट्टियां वो जरा ले आना, उसको एक नाम हमने दे दिया, टेबल मेज, नाम पीछे दिया लेकिन पहले वो चीज चित्र सामने आया, चित्र सामने आया। फिर कहते आवश्यकता आविष्कार को जन्म देती है, आवश्यकता से ही आविष्कार होता है, कोई खोज आवश्यकता से होती है, तो आवश्यकता समझी तो आवश्यकता के अनुसार हमने फट्टा लिया, टांगे लगाई, उसकी कितनी हाइट होनी चाहिए वो थोड़ा निर्धारित किया, फिर हमने उसका नाम दे दिया फट्टा मेज टेबल। इसी प्रकार कोई भी चीज बनती है, मान लीजिए कहते हैं एरोप्लेन बना, तो कैसे बना, पक्षी को देखा, ये पंख खोलकर चलता है, जब ऊपर चला जाता है ज्यादा ऊपर तो आप देखिए उसके पंख ऐसे ही रह जाते हैं, फिर नहीं ज्यादा मारता मराता। देखकर आया कि ऐसा एक इंसान को भी अगर एक ऐसी चीज बना दी जाए जो इंसान उड़ता हुआ कहीं से कहीं पहुंच सके, उसके अंदर विराजमान होकर के ऐसा हो सकता है, तो पहले उस चीज की आवश्यकता समझी गई कि यहां से वहां जाने में साधन बहुत टाइम लगाते हैं लेकिन जल्दी भी हो जाए और इंसान सुविधाजनक पहुंच भी जाए, धरती से भी ऊपर उठ जाए तो क्या हो, आवश्यकता समझी, फिर उस पक्षी को देखा, फिर एक चीज का निर्माण किया और जब वो निर्मित हो गई तो हमने नाम लगा दिया हवाई जहाज एरोप्लेन। पहले थोड़ी एरोप्लेन नाम रखा गया था, पहले तो चीज देखी गई, चित्र सामने हमारे आया। तो मैं इन बातों में ज्यादा नहीं जाती क्योंकि दादी जी ने भी अभी आना है, तो वो बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि बाबा भी हमको जो योग पावरफुल हमारा लगे हमको भी चित्र की भाषा में समझाता है। क्या कहता है, बच्चे तेरा स्वरूप एक चमकता हुआ, तुमने आकाश में तारा देखा है ना, ऐसा चमकता हुआ ज्योति का स्वरूप है तेरा, जिसका मैं आपको सुना भी रही थी कि कि एक वाणी में बाबा ने कहा कि चाहे तू मूल वतन में होंगे, वहां भी तेरा चमकता हुआ बिंदु रूप होगा, लेकिन जो तुम्हारे स्वरूप की चमक होगी वो अन्य सब आत्माओं की चमक से निराली चमक होगी, क्योंकि तुम सतयुग की प्रारंभ की आत्माएं हो। चमक में भी फर्क है। तो हमारे सामने क्या आया? सितारा हमने देखा है, सितारा आ गया, और सितारा भी कैसा चमकता सितारा, इतनी चमक है, लाइट है। देखो ऐसी लाइट है कि शक्ति रूप लाइट है, शक्ति है उसके अंदर। वो कहते हैं तू लाइट भी है, तू माइट भी है। अब हम लाइट को एक माइट के रूप में देखते हैं, बहुत तेज आप बिजली गरजते देखते हैं और एकदम फटता है बादल, तो हमको मालूम है ना कितनी लाइट और किस प्रकार माइट थी उसकी जो बादल फट गए, आवाज कितनी उसकी हुई, इफेक्ट कितना उसका हुआ। तो हम अपने सामने वो सारा चित्र लाए कि मैं एक लाइट हूं, और लाइट भी क्या है, एक माइट है, उसमें पावर है, उसमें शक्ति है उसमें। और लाइट भी ऐसी लाइट नहीं, बाबा कहते लाइट भी कैसी, वो लाइट में ये लाइट थी। तू जो आत्मा लाइट है, तू वास्तव में उस लाइट में, जो तेरा धाम था, ज्योति देश था, वो लाइट था, जहां लाइट ही लाइट थी, और उस लाइट के मध्य तू लाइट था। तो कभी बाबा हमको कहते हैं सूर्य देखा है ना, चंद्रमा देखा है ना। अब मैं उस बात को इस रूप से लेती हूं कि हमारा जो निज स्वरूप था जहां हम थे, वो आप ऐसा इमर्ज कीजिए जैसे कोई बहुत गैसेस एटमॉस्फेयर में होती हैं, या कुछ रेनी कण होते हैं, रेती कण या कोई भी धूल कण एटमॉस्फेयर में होते हैं, तो उस समय आप सूर्य को या चांद को या सितारों को देखें तो उनकी चमक कुछ और सी लगती है। लेकिन वर्षा खूब तेज हो गई, उसके पश्चात आप जरा सूर्य को, चांद को, सितारों को देखिए, फिर आपको कैसे लगते हैं? सब उस समय धूली कण सब डिस्पेल्ड हो गए, जैसे डिसॉल्व हो गई ये चीजें, कोई भी प्रकार की गैसेस अब एटमॉस्फेयर में उस समय नहीं है। तो सूर्य या चांद है, लेकिन उसके आसपास ऐसा लगता है जैसे गोल्डन गोल्डन सुनहरी सुनहरी लाइट, जिसको कहेंगे ऑर्ब, प्रभा मंडल, उसके मध्य वो है सूर्य। ऐसे सितारा जरूर है, लेकिन आसपास प्रकाश ही प्रकाश है, और उसके मध्य चमकता हुआ सितारा। और बाबा हम बच्चों को कहता है तो ऐसा चमकता हुआ दिव्य सितारा आत्मा है, जिसके चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश, ज्योति ही ज्योति है। कभी हमको ये भी कह देते हैं कि तू शरीर में है, लेकिन तू इस शरीर को ऐसा समझ कि एक लाइट है, एंजेलिक फॉर्म है, ये शरीर नहीं मेरा, हार्ड मास का नहीं है, लेकिन एक प्रकाश का बना हुआ पुंज है, और उस प्रकाश के पुंज के मध्य चमकता हुआ मैं एक दिव्य सितारा हूं। ऐसा चलते फिरते, उठते बैठते अपने निजी वास्तविक स्वरूप का अनुभव करो। हम चल रहे हैं, है देह में, लेकिन देह को देह न देखते हुए एक लाइट के आकार में स्वयं को देख रहे हैं। अब मान लीजिए आंखें मेरी मेरे चेहरे पर हैं, लेकिन आंखें चेहरे को नहीं देख पा रही है, चेहरे पर आंखें। अब उसको देखने के लिए मैं मिरर लेती हूं, शीशा लेती हूं, अपनी आंखों को या चेहरे को देखती हूं। तो बाबा ने हमको ज्ञान का शीशा दिया, ये मिरर दिया, और समझ देकर के हमको कहते हैं अब देख तू जरा अपने आप को, देख तू कैसा है। अब आप देखो, हम अपने को देख सकते हैं? कई बार ऐसा भी होता है अपने को आप ही नहीं देख पा रहे। कारण क्या? कि हमारा फोकस ठीक नहीं बैठता, आप प्रोजेक्टर से किसी चित्र को दिखाना चाहो तो प्रोजेक्टर का जब तक फोकस ठीक नहीं होगा चित्र क्लियर नहीं होगा। जब तक हमारा मन सब तरफ से हटकर केवल मात्र शुद्ध शांत निर्मल पवित्र मन की स्थिति नहीं होगी। और जैसे मन की स्थिति या बुद्धि केवल उसके साथ वैसी श्रेष्ठ पवित्र सत्वप्रधानता के स्टेज में, जब मन सब तरफ से हटा हुआ होगा, केवल मन में एक ही संकल्प कि मुझे अपने स्वरूप को देखना है और बुद्धि भी उसी साथ दे रही है, बिल्कुल फोकस क्लियर है, आप देखिए आप अपने स्वरूप को, आपको कैसा स्वरूप लगता है, कितना उज्ज्वल स्वरूप है मेरा, कितना पवित्र स्वरूप निर्मल स्वरूप है मेरा। हम अपने स्वरूप को पहले अपने दिव्य ज्ञान समझ के नेत्र से देखें तो सही, मुझे मेरा स्वरूप क्लियर दिखाई देता है। क्योंकि किसी चीज को समझना समझना नहीं कहलाता, खाली समझना भी एक प्रकार का देखना होता है। जैसे मैं कोई बात सुनाती हूँ, मैं कहती हूँ देखो जब मैं वहां गई, मैं आपको बताऊं उन्होंने मेरे से क्या व्यवहार किया, देखो कैसे बोले वो, देखो का क्या मतलब, कोई दिखाई दे रहा है क्या, देखो इंग्लिश में भी बड़ा अच्छा वर्ड है, सी यू सी हाउ दैट पर्सन डील विथ मी, यू सी मीन्स सी मीन्स तो देखना होता है, ये तो समझने की बात है। तो किसी बात को सही रूप से जब समझ लिया जाता है तो वो क्लियर पिक्चर जैसे सामने आ जाती है। ये देखना ही समझना है और समझना ही देखना है। तभी संदेशियां जब ट्रांस में जाती हैं तो कहते हैं साक्षात्कार हुआ। साक्षात्कार का मतलब क्या, साक्षात सब चीजें दिखाई देने लग गई। और वो साक्षात्कार का जब अनुभव सुनाते हैं तो क्या सुनाते हैं, बाबा खड़े थे, एक ऊंची पहाड़ी थी, बहुत ऊंची, और पहाड़ी भी चमक रही थी जैसे सोने की लाइट की पहाड़ी थी। अब वो ऐसे बता रहे हैं, वैसे तो बाबा किसी पहाड़ पर खड़ा हो क्या, नीचे खड़ा हो, कहीं भी हो, लेकिन किस प्रकार वो साक्षात्कार करा रहा है। हमारे ज्ञान में चित्र का बहुत महत्व है और रियलिटी में चित्र से हर चीज बड़ी स्पष्ट होती है, चित्र का चरित्र पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। कहते भी हैं दुनिया में भी कि परमात्मा को मनुष्य ने अपने मनोस्थिति के चित्र के रूप से ही गढ़ा, जैसा उसके चित्र आया वैसा उसने, इंसान ने भगवान को भी अपना इष्ट भी अपने चित्र जैसा इंसानी रूप बना दिया। तो असल में देखा जाए तो संदेशी बता रही हैं कि मैंने देखा एक ऊंची लाइट की पहाड़ी थी, वो ऐसे सुंदर चमक रही थी। अब बता रहे हैं, हमारे सामने आ रही है ना, और पहाड़ी पर बाबा खड़े हैं और बाबा में जैसे लाइट का आकार है, उस लाइट के आकार में चमकता हुआ दिव्य पॉइंट है, अगर वो उसको ध्यान देती है तो। ये तो इतने में बाबा ने कहा, आओ बच्ची, मैं तो बड़ी दूर खड़ी थी और बाबा इतना ऊंची पहाड़ी पर, मैं कहती बाबा मैं कैसे ऊपर आऊं, बाबा ने कहा बच्ची, तो बाबा ने ऐसे किया तो जैसे हाथ मेरे पास है और मैं बाबा का हाथ पकड़कर पहाड़ी पर पहुंच गई। अब ये चित्र आ रहा है, साक्षात्कार मानो दिखा रहा है, बाबा दिखा कर समझा रहा है, समझा रहा है, लेकिन कैसे समझा रहा है, दिखाकर चित्र के रूप से। अब हम बड़े ध्यान से सुनते हैं, अच्छा फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। कई बार बाबा के साक्षात्कार के आप सीन देखो, ये देखना होता है एक प्रकार का, ऐसा देखना जो क्लियर, मैं कौन बाबा कौन, ज्वालामुखी का मतलब क्या, आत्मा को अपना लाइट और माइट स्वरूप इतना क्लियर हो और वो लाइट और माइट का सागर दाता اتنا کلیئر ہو کہ وہ شکتیاں اس کے پاس آ رہی. ہمارے سامنے کئی پکچرز بنی ہیں, آپ ایک پکچر دیکھیں گے جو ودیشیوں کی بنی ہوئی ہے اور یوگ کی پکچر کے اوپر ہے, یوگ کی کتاب کے اوپر ہے وہ پکچر, کہ ایک بہن بیٹھی ہے اور وہ بیٹھی ہوئی اس کا ایک جو روپ ہے وہ ایک لائٹ کا روپ دکھایا ہے اور سامنے سے ایک لائٹ پوائنٹ سے لائٹ آ رہی, اتنی لائٹ فرٹائل لائٹ آ رہی ہے جو وہ لائٹ لائٹ چاروں طرف لائٹ کے بیچ میں ہے اور وہ ایسے بیٹھی ہے مانو اس سمے کیول ایک یاد ہے اور کچھ بھی نہیں, چاروں طرف جو لائٹ کا پربھا منڈل ہے وہ اس کو اس قدر گھیرے ہوئے ہیں کہ کہیں بھی اس کا بدھی یوگ نہیں جا رہا, کیول وہی بدھی یوگ جا رہا ہے. یا ایک دوسرا چتر بنا ہوا ہے ہمارا جو بھی یوگ کی بک پر ہے, جس میں آپ دیکھو جیسے ایک بہت تیز سے بچھار آتی ہے, کہیں ورشا کی بہت تیز ورشا ہوئی ہے, ایسے ایک بھائی بیٹھے ہیں اس میں اور سامنے سے لائٹ ہی لائٹ کا, جیسے لائٹ ایک ٹورنشیل رین ہوتی ہے بہت موسلا دھار برسات, بہت رین ہو رہی ہے لائٹ کی اور وہ لائٹ کی رین ایسی ہے کہ ان کا جو شریر ہے وہ سارا لائٹ ہی لائٹ کا دکھایا ہوا ہے, وہ لائٹ سے جیسے وہ سب اس کا باڈلی فارم جو ہے وہ دکھائی نہیں دے رہا لیکن لائٹ لائٹ سب دکھائی دے رہی ہے اور لائٹ سے وہ لائٹس نکل کے چاروں طرف وہ کرنوں کے روپ میں جا رہی. یہ ایسے چتر کس لیے دکھائے؟ تاکہ یہ چتر ہمارے چرتر کے اوپر کہتے ایز یو تھنک سو شیل یو بیکم, جیسا آپ سوچیں گے ویسا آپ کا سروپ بنتا جائے گا, جیسا آپ کا چتر ہوگا ویسے آپ کا چرتر پر ایفیکٹ آئے گا. بہت بڑا اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے اور بابا نے خاص ہم بچوں کو چتر کا آدھار لے کر کسی کو سمجھانے کی ودھی بتائی. بچے کسی کو آتما اور پرماتما بتانا ہے یہ دو چتر لگا دو, باقی چتروں پر کرٹن کر دو, انہیں کہو پہلے یہ دو چتر آپ سمجھ جاؤ پھر ہم نیکسٹ چتر آپ کو بتائیں گے, نہیں تو ایسے ہی کہہ دیں آتما پرماتما کا گیان دے دو. ایک چھوٹے بچے کے سامنے بھی پہلے چتر آتا ہے پھر اسے پتا چلتا ہے, ماں اس کو وہ دیکھتا ہے گھر میں ہر سمے گھومتا ہوا ایک دو آدمی, تو ماں کہتی تیرے پاپا ہیں, کون ہے؟ پاپا پاپا کر کر کے اس کو پتا چلتا ہے, چتر دیکھتا ہے پہلے, اسے نہیں معلوم پاپا ماما کیا ہوتا ہے لیکن دیکھتا ضرور ایسے کر کے ادھر گیا یہ ادھر گیا دیکھتا رہتا ہے, پھر اس کو بتایا جاتا ہے تیرا پاپا ہے یہ تیرا ماما ہے. اسکول میں بھی چھوٹے بچوں کو بھی چتر کا بات پہلے یہ نہیں اسے معلوم ہوتا کہ اے سے کیا بنتا ہے بی سے کیا بنتا ہے کا سے کیا بنتا ہے کھا سے کیا بنتا ہے, وہ پہلے کبوتر دیکھتا ہے چڑیا دیکھتا ہے اور اس کبوتر چڑیا کو دیکھتا ہوا پھر اس کو بتاتے ہیں یہ کبوتر, کا سے کبوتر کھا سے خرگوش, اس کو کوئی یہ کیا خرگوش دکھائی دے گا کہے گا کھا سے خرگوش, اسے یہی معلوم ہے یہ مجھے کہا گیا تھا کھا سے خرگوش. تو چتر کا بہت بڑا پربھاؤ ہوتا ہے. ہم بھی جب یوگ میں بیٹھتے ہیں تو ہم دیکھیں ہمارے سامنے میرا اپنا چتر بالکل کلیئر آ گیا, گیان کے درپن میں میں سوئم کو دیکھوں کتنا شدھ کتنا نرمل کتنا پوتر, جہاں کسی پرکار کی بھی کوئی انے دھول دھولی کن کچھ بھی نہیں, کیول پرکاش ہی پرکاش میں میں پرکاش کا سوروپ آتما ہوں. جب تک میں نے سوئم کو سوئم ہی نہیں دیکھا میں کہوں کہ میں شکتی شالی جوالا مکھی یوگ کا انبھو کرنا چاہتا ہوں, باپ کا انبھو تو پیچھے پہلے سوئم کا انبھو تو کر لیں. اور سوئم کا جب انبھو ہوتا ہے تب ہماری استھتی اوپر اٹھتی ہے یہ دیہ اور دیہ کے جگت سے, تب ہم آگے بڑھتے ہیں. تو میں اپنی بات کو جلدی جلدی وائنڈ اپ کرتی جاؤں گی. اس پرکار ہم دیکھتے ہیں ہم کو معلوم تو ہے کہ آتما ہے, और परमात्मा का स्वरूप यही है, वो भी दिव्य ज्योति बिंदु है। और वो ज्योति बिंदु ही नहीं है, जैसे एक सूर्य चमका हुआ सूर्य जिसमें प्रकाश और प्रकाश की किरणें हैं, ऐसे प्यारे बाबा जो हर क्षण हर पल सर्व शक्तियां बिखेरते हुए अपने बच्चों को भरपूर करने के लिए प्रति पल बच्चों की सेवा में तत्पर। केवल मुझे तो इस देह की दीवार से हटकर अपने स्वरूप में उनके सन्मुख आना है बस। अगर हम दीवार की ओट में रहें, सूर्य उधर है लेकिन मैं अपने उस कमरे की दीवारों के मध्य हूं, तो सूर्य का प्रकाश और सूर्य का जो लाभ है मैं पूर्ण नहीं ले पाऊंगी। अगर मुझे पूर्ण लाभ लेना है तो मुझे अपनी दीवारों से अलग हटकर बाहर निकलकर सूर्य के सन्मुख आना होगा। तो ये अपना चित्र हम देखें, जब हम याद में बैठते हैं तो सचमुच हम अपनी इस स्थिति में स्थित होकर बैठ सकते हैं। मैं कितना चमकता हुआ दिव्य स्वरूप ज्योति में चमकता हुआ एक दिव्य सितारा और चैतन्य सितारा हूं, कितना मेरा पावन उज्जवल शुद्ध पवित्र स्वरूप है। देखो तो सही अपने स्वरूप को। अब हमें मालूम तो पड़ गया कि आत्मा मैं हूं और आत्मा का ये स्वरूप है, आत्मा का सर्व संबंध परमात्मा से है और परमात्मा का ये स्वरूप है। ये सब मालूम होने के बावजूद भी वो कनेक्शन जुटा हुआ नहीं रह पाता, इसका कारण क्या? हम योग के विषय में ज्यादा से ज्यादा सुनना और ज्यादा से ज्यादा अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं। कोई ने हमको कहा रात्रि का योग रखो, जिसको इच्छा है वो रात्रि का योग बात कर ले योग के कमरे वालों से, तो वहां जाकर भले करे, लेकिन सबके लिए हम नहीं कहेंगे। इच्छा होती है हर एक की कि हम योग का बड़ा अच्छा अनुभव करें, लेकिन जब तक मुझे अपना स्वरूप क्लियर ही नहीं है, बाप का स्वरूप क्लियर ही नहीं है, तो सन्मुखता का अनुभव कहां से होगा? और जब सन्मुखता का अनुभव नहीं होता है तो आत्मा को छटपटाती है अंदर से कि मुझे वो अनुभव जो बाबा कहता है होना चाहिए वो मुझे क्यों नहीं हो पाता है। और मैं ऐसा समझती हूँ ना, अनुभव होने का कारण ये होता है कि हम अपनी बुद्धि को कहीं ना कहीं दूसरी बातों में ले जाते हैं। कहते हैं मनुष्य एक गुण को दूसरे गुण से कई बार लड़ा देता है, होते दोनों गुण हैं लेकिन दो गुणों की लड़ाई करा देता है। कैसे एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ, अब गीता में आता है एक कि एक धार्मिक व्यक्ति खड़ा था, भक्त खड़ा है, उसने देखा कि गाय जा रही है भागती हुई। इतने में कसाई आता है और पूछता है उससे कि आपने मेरी गाय जाती हुई देखी? तो उसने देखी थी गाय दाई तरफ गई थी, लेकिन उसने कसाई को कहा कि गाय बाई तरफ गई। अब वो वास्तव में देखा जाए तो अहिंसा भी एक गुण है और सत्यता भी एक गुण है। अब सत्यता के गुण को वो अपनाए या अहिंसा के गुण को अपनाए? उसने अहिंसा के गुण को अपना लिया, सत्या के गुण सत्यता के गुण को हटा दिया, लड़ाई दोनों की करा दी, उसको ले लिया, सोचा ये भी तो गुण है, वो गुण है तो ये भी तो गुण है। ऐसे कई बार हम भी ज्ञान में चलते हैं और बाबा हमको ये कहता है बच्चे लक्ष्य और लक्षण समान चाहिए, लक्ष्य और लक्ष्य पिता को कभी भूलना नहीं। जब जीवन मुझे दिया है तो मेरे और मेरे द्वारा प्राप्त होने वाला लक्ष्य, ये दो चीजें तेरी मन बुद्धि के पटल पर हमेशा क्लियर रहनी चाहिए, कहीं और तेरी बुद्धि ना जाए। जिसका बाबा ने एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अर्जुन की आंख उसी मछली और मछली की उस आंख पर थी जहां उसे बाण मारना था, उसके अलावा उसकी आंख इधर उधर नहीं गई, तब उसने बाण ठीक से मारा। ये बाबा के दिए हुए एग्जाम्पल्स हैं स्पष्ट करने के लिए हमको। हम क्या करते हैं, हम ज्ञान में चल रहे हैं, चलते हुए किसी ने कहा आपने सुना है वो फलां व्यक्ति आज उसने कितना क्रोध किया, कहते उसने वो तो 20 साल से ज्ञान में चलता है, कहते हाँ 20 से तो चलता है लेकिन क्रोध उसमें अभी गया नहीं। चाहे हमने सुन लिया, चाहे हमने उसको क्रोध करते देख लिया, मुझे क्रोध थोड़ा आया तो मन में क्या आता है, अरे 20 साल वाले में भी क्रोध है, मैं तो 5 साल से तो चला हूं, थोड़ा बहुत आ गया तो कौन सी बात है, उस जितना तो फिर भी नहीं आया। लक्ष्य और लक्ष्य दाता भूल गया, किसको देखने लगे, अपने इर्द गिर्द वालों को देखने लगे। अब जब इर्द गिर्द हमारी बुद्धि चली गई तो हमारा लक्ष्य दाता के ज्ञान की आज्ञा जो मिली है कि बच्चे एक निरंतर मुझे याद करो, वो याद का तांता तो हमारा टूट गया, और ना अनेकों बार टूटता है, बार बार टूटता है। इसको देखा उसको देखा, इसने ये किया उसने वो किया, और कंपेयर करते हैं, अगर ये क्रोध इसने किया तो 20 साल वाले ने क्रोध किया, मैं तो 5 साल वाला हूं, मैंने तो थोड़ा किया है, वो भी अवगुण है, वो भी अवगुण, लेकिन उस अवगुण को अवगुण से लड़ाकर वो अवगुण बड़ा हो गया, मेरा छोटा हो गया, मैं फारिग वो बंदी। ऐसी ऐसी चीजें हम अपने मन बुद्धि में लाते हैं, फिर हम कहते हैं बताओ जरा योग कैसे लगे। हम अपने आप से पूछिए, अभी मैं योग में बैठी, बाबा की या स्वयं के स्वरूप की स्मृति मुझे रही, वो चित्र मेरे सामने रहे, या मेरे सामने कुछ हो रहा है, कभी मार्केट आ गई, कभी जन्माष्टमी में आज कार्यक्रम है वहां सामान रखा है मैं बताकर नहीं आया वो याद आ गया, कभी भोजन पर जरा जल्दी जाना था क्योंकि आज मैंने सुबह भी नहीं खाया और अब जल्दी जरा खाना है, कोई ना कोई चित्र, कभी किचन आ रही है आपके सामने, कभी जन्माष्टमी की झांकी आ रही है सामने, कभी आपका अपना कमरा आ रहा है सामने, कभी आपने सेलफोन कहीं रख दिया वो ख्याल, कोई ना कोई और चित्र आ रहे, तो आपका जो बुद्धि का योग है वो डाइवर्ट हो रहा है अनेक चित्रों की तरफ, और जो एक चित्र था जिस चित्र को देखना ही मेरे योग की स्थिति थी, वो चित्र कहाँ गया। तभी तो सेकंड में योग पूरा हुआ, उठ के भागे, पानी की प्यास लग रही है, एक घंटे में प्यास लग गई, ऐसा कैसे हो सकता है, एक घंटे के अंदर हम फ्रेश होने जा रहे हैं, क्या चीज है ये, ये रियलिटी नहीं है, क्योंकि हमको वो आनंद नहीं आता, वो रस नहीं आता, वो स्वरूप का चित्र चित्रित सामने पिक्चर क्लियर नहीं होती, उसमें हम डूबते नहीं हैं। आज वो सागर में नहाते हैं, आनंद आता है, उनको कहते हैं जल्दी निकलो, कहते हैं और 10 मिनट 10 मिनट्स प्लीज और, क्या आनंद आ रहा है, और यहाँ तो 5 मिनट में कहो हो गया, कहते वो गए योग हो गया पूरा। या कई बार पूछते हैं क्लास कब शुरू होनी है, कहते क्लास वैसे योग तो 6:30 शुरू होता है, क्लास 7 बजे, कहते अच्छा क्लास 7 बजे होती है, इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हमारा योग है, लेकिन वो तो समझो छोड़ो, ये तो इकट्ठे होने का टाइम है, क्लास बता दो कब शुरू होगी। तो जिस चीज को इतना इम्पोर्टेंस बाबा ने दिया, हमने उसको इतनी इम्पोर्टेंस दी, हम कहते हैं रात को हम देर से सोए थे, काम बहुत ज्यादा था, सुबह 4 बजे कैसे उठते, हमने जीवन दिया जिस प्रभु को, और उस प्रभु से सर्व शक्तियों के वरदानों को लेकर अपने जीवन को दिव्य बनाने के लिए हमने अपना सर्वस्व दे दिया, और आज उस देन दाता की देन को दुत्कार कर हम अपने काम के महत्व को जानकर, अपनी थकावट को महत्व देकर, अपने सारा दिन की दिनचर्या का महत्व रखकर उस चीज को गौण कर देते, और कारण यही, हमको रस नहीं, अनुभव नहीं होता है। तो बाबा हम बच्चों को यही कहते हैं, बच्चे तेरा अपना स्वरूप क्या है देख तो सही, तू विजयी मूर्त आत्मा है, सफलता स्वरूप आत्मा है, तुझे पवित्र बंदा नहीं, तेरा स्वरूप ही पवित्र है, तो अपने परम पवित्र स्वरूप को देख और महिमा गा, वहां रे मैं और वहां रे मेरा बाबा। कभी अपनी महिमा गाई है? वहां रे मैं तब कर देते होंगे जब आपकी मनोइच्छा के अनुकूल कुछ आपने कर लिया, का वहां रे मैं, लेकिन रियली मैं वहां रे मैं हूं, वाह वाह मेरे जैसा दूसरा कौन हो सकता है। कितना हमारा उज्जवल, कितना दिव्य और कितना श्रेष्ठ, कितना पावन मेरा निज का स्वरूप है, जिसमें केवल लाइट ही लाइट है और पवित्रता ही पवित्रता है, उसमें अपवित्रता का अंश नहीं। तभी दृष्टि दिखाई देती है जो चीज, क्योंकि चित्र दिखाई देने की चीज है। आप देखिए, एक समय था जब हम ज्ञान सुनाते थे, लेकिन आज आम करके सुनाने के साथ साथ दिखाने की आवश्यकता पड़ गई। आज जो वीडियो चलता है, भी हम सुने तो सही लेकिन देखे भी सही, और जब कोई चीज सुनी भी जाती है और देखी भी जाती है तो उसका हृदय पर छाप बहुत ज्यादा पड़ती है। खाली सुनी हुई चीज की छाप इतनी नहीं पड़ती जितनी देखी हुई की भी पड़ती। तो बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं, तू अपने स्वरूप को भी देख और मेरे स्वरूप को भी देख, देखकर बैठ जा मेरे पास, आ जा, सर्व शक्तियां मेरी तेरे लिए हैं और थ्रू तेरे में सारे विश्व की आत्माओं को ये शक्तियां देने वाला। क्या वो सर्वशक्तिवान सबको शक्ति नहीं दे सकता? वो मुझे ही क्यों कह रहा है कि तेरी मनसा द्वारा मैं औरों को शक्तियां दूंगा? आज भी बाबा के महावाक्यों में था। कारण यही है कि औरों को न स्वयं की पहचान है, न बाप की पहचान है, न संबंध जोड़ सकते हैं, न शक्ति ले सकते। हम बच्चे बाबा को पहचान गए, स्वयं को पहचान गए, संबंध जोड़कर उनसे शक्ति ले सकते हैं, और वो शक्तियां इस जगत में रहते हुए वाइब्रेशंस के रूप में हम दे सकते हैं। ये केवल हम बच्चों का ही काम है, शक्ति लेना और शक्ति देना, और कोई नहीं दे सकता। स्वयं भगवान भी कहते हैं, मैं भी नहीं दे सकता। मैं भी अपने बच्चों को अपनी पहचान देकर, उनका संबंध जोड़कर उनको शक्ति देता हूं और उनके द्वारा विश्व की आत्माओं को शक्तियां पहुंचाता हूं। बच्चे, इतना बड़ा काम है तुम्हारे ऊपर, सारे विश्व की आत्माओं को शक्तिशाली बनाना। ये बहुत जरूरी चीज है, जिस पर मैं एक बात सुना देती हूं कि बाबा ने इस लास्ट मुरली में हमें कहा था कि सारा दिन में थोड़ा समय निश्चित करो विश्व की आत्माओं को शक्ति, शांति और आज बाबा ने कहा सहनशीलता, इन शक्तियों का वाइब्रेशंस देने का। क्यों वाइब्रेशंस देने की आवश्यकता है? क्योंकि एक समय ऐसा आने वाला है, ऐसा समय आने वाला है जब बाबा ने हम बच्चों को कहा था लास्ट में, बहुत आत्माएं एकत्रित रूप से शरीर छोड़ेंगी लेकिन मुक्ति का द्वार खुला नहीं, गेट खुला नहीं, वापस जात में जा नहीं सकेंगे। और एटॉमिक एनर्जी का इस कदर कार्य चलेगा कि गर्भ भी धारण होना बंद हो जाएगा। ऐसे समय पर जो आत्माएं लाखों करोड़ों के अंदाज में शरीर छोड़ेंगी, ना घर जा सकेंगी, ना गर्भ में आ सकेंगी, वो आत्माएं वातावरण में, मंडल में घूमेंगी, जैसे कि एक परछाई के आकार में। और उस समय वे आत्माएं आप आत्माओं को भी विघन डालेंगी, क्योंकि आप कहते हो हम शांति दाता के बच्चे शांति ले रहे हैं, उस समय वो आपको योग नहीं करने देंगी और ऐसा आभास आएगा कि कोई मुझे योग में बैठने नहीं दे रहा, मैं चाहता या चाहती हूं लेकिन बैठ नहीं पा रहे। उस समय वो आत्माएं चाहेंगी अब हमको कुछ दो। और बाबा ने कहा हुआ है लंगर बहुत बड़ा लगने वाला है, लेकिन तेरे लंगर के देगचे में अगर तेरे दाने नहीं होंगे तो लंगर में लगी लाइन तुझे खाने नहीं देगी, वो कहेगी दो कुछ अब। इसलिए बच्चे पहले से ही अपने जीवन के देगचे को भरपूर कर लो, ये सब आत्माएं आएंगी। हाँ ये जरूर है कि जिन आत्माओं ने बहुत समय से उस सर्वशक्तिवान से सर्व शक्तियां लेकर और विश्व की सर्व आत्माओं को उन शक्तियों का योगदान देने का कार्य किया होगा, ऐसे समय पर वो आत्माएं जो शरीर छोड़कर भटकने की अवस्था में होंगी वो उनको कष्ट नहीं पहुंचाएंगी, क्योंकि उन्होंने उनसे हितकर रूप में शांति और शक्ति का अनुभव किया हुआ है। और अगर आप बच्चों ने इन आत्माओं की सेवा नहीं की तो ये आत्माएं अंत में आपको शांति में बैठने नहीं देंगी। इसलिए बाबा रोज हमको कहता है थोड़ा समय निकालकर विश्व की आत्माओं को शांति का योगदान दो। लेकिन योगदान तभी तो देंगे जब अपने पास स्टोर स्टॉक इकट्ठा होगा। अगर अपने पास ही स्टॉक नहीं है तो हम औरों को कैसे दे पाएंगे। तो ये जो भट्टियां होती हैं, ये जो संगठन के कार्यक्रम होते हैं, ये वास्तव में देखा जाए महायज्ञ में एक दो के सहयोग का वातावरण बनता है। और जिस वातावरण में हम सच्चे याद की अनुभूति जो करना चाहते हैं वो हम बहुत अच्छी कर सकते हैं, लेकिन हमारी मनोस्थिति उसके लिए तैयार हो और इच्छा प्रबल हो। अगर किसी की किसी कार्य को करने की इच्छा प्रबल है, दृढ़ है, वो कभी असफल नहीं हो सकता। किसी एक ने बहुत सुंदर एक मैगजीन में एक्सपीरियंस लिखा था, उसकी इच्छा प्रबल थी कि यहाँ मैच होगा और उस मैच में मैं जरूर जाऊंगा, वो बिना गेम देखे रह नहीं सकता। जाऊं कैसे, टिकट बहुत ज्यादा है, पैसा पास नहीं। उसने इतनी अच्छी युक्तियां हैं, उसमें एक युक्ति खाली बताती हूँ कि जब बीच में रिसेस थोड़ा टाइम वो होता होगा तो उस समय उसने एक छोटा टोकरा से ले लिया, एक झाड़ू ले लिया हाथ में और हटो हटो हटो, तुम्हें सफाई करने वाला, हटो हटो हटो, सब लोग परे परे हट गए और थोड़ी सफाई करके आराम से कुर्सी पर जाके टोकरे को नीचे रखकर बैठ गए, क्योंकि उसने तो मैच देखना था, वो सफाई करने थोड़ी आया था। अब जिसकी लगन हो, इच्छा हो, वो क्या नहीं कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। लेकिन हमारी इच्छा अंदर से प्रबल हो, हम बाबा तेरे बन गए और तेरी समीपता का, तेरी समानता का मुझे अनुभव ना हो, जबकि मैं हूं तेरे समान, लेकिन उस समानता का मुझे अनुभव नहीं हो रहा। बहुत समय हम आपसे दूर रहे, अब तो हमें पता चल गया आप कौन है और मैं कौन। तो मैं समझती हूँ, मैं अभी ज्यादा नहीं बोलती हूँ, अभी हम 5-7 मिनट जब तक दादी का आना हो तब तक हम जो मैंने कहा है, दो ही बातें मैंने कही, क्योंकि मैं अपनी बात को वाइंड अप करती जा रही थी ताकि मैं थोड़ी बात कहकर जल्दी करूं। मुझे था बहुत सुनाने का लेकिन घड़ी की तरफ मैं देखती हूँ, आप तो नहीं देखते हो, आना है 7 बजे कहा है ना दादी का, हाँ, तो इसलिए हम 5 मिनट पहले बैठते हैं बाबा की याद में। और अब देखना जरा आप बैठे हो, मैं कौन, मैं क्या चमकती हुई दिव्य प्रकाश स्वरूप आत्मा, मेरे ही चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश का प्रभा मंडल है, जिसके मध्य मैं आत्मा चमकता हुआ एक सितारा विराजित, और अपने सन्मुख ज्ञान सूर्य सर्व गुणों के सागर, सर्व शक्तियों के भंडार, सदा सर्व शक्तियां बिखेरते हो मेरे प्यारे कल्याणकारी मेरे बाबा मेरे सन्मुख उपस्थित है, जिनका मैं पुत्र था, जिनका हूं और उन्हीं का ही रहूंगा। ऐसे अपने आदि अनादि जीवन के सच्चे साथी और सहारे के सन्मुख स्वयं को उपस्थित जान, सर्वशक्तिवान की समीपता का अपने स्वरूप में स्थित हो अनुभव करने की कोशिश की।
पाप धुल गए हैं, आत्मा चमक गई है, मन के पाप धुल गए हैं, आत्मा चमक गई है, गुण ही गुण भरे हैं, खुशबू महक रही है, गुण ही गुण भरे हैं, खुशबू महक रही है, मन के पाप धुल गए हैं।